Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्यग्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति शांति।
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। विचार के लिए 16वां श्लोक। विरिंचिर दीर्घायुर् भवतु भवता तत् परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यम् सखलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचार को वा मां विशद कृपणा पाति शिवते कटाक्ष व्यापार स्वयमपि च दीना वनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कटा कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः संभ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिर्निजकनकमाणिक मुकुटहि त्वमेको दिलोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ति हरिमुखा कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदासा च कियती कदा वा मद्राक्ष्यां वहसि करुणा पूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वार घटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तवसि वक्रितार्थः खलु वयम् सदा मोहाटव्याम् चरति युवतीनां कुचगिरौ नटस्त्यासाशाखा स्वटति झटिति स्वैरमवितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपि मत्यन्त चपलम् दृढ़ भक्त्या बद्धा शिव भवदधीना कुरु विभो विरिंची दीर्घायुर् भवतु भवता तत्परशिर चतुष्कं संरक्षं सकलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा माम् विशद कृपया पाति शिवते कटाक्ष व्यापार स्वयमपि च दीनां वनपरः विरिञ्चि दीर्घायु आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे महाराज, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। विशद, विशद का अर्थ होता है निस्सीम, विस्तार, विशद, इसीलिए अपरंपार। जिसकी महिमा गिनती में आ न सके वही तो विशद है। भगवान शिव खुद विशद है, इसलिए संबोधन ही है यहां पर, हे विशद। विरिंचिर दीर्घायु भवतु, हम लोगों की आयु लिखने वाला कौन है? हम लोगों की आयु लिखने वाला कौन है? विधि, हमारी आयु लिखने वाला ब्रह्मा है। उसने जितना लिख दिया उतने ही हमको मिल गया। हाँ, लेकिन ब्रह्मा कितना बदमाश है इस बात पर पता चल रहा है। हमारी आयु तो उसने बहुत थोड़ी लिख दी, और उसने अपनी आयु कितना लिखी? दीर्घायु, विरंची दीर्घायु। देव जी, उसकी आयु के अंतर्गत ये जो विश्व ब्रह्मांड है वह तो हजार बार प्रलय होकर फिर पैदा होगा, तब भी वो नहीं मरेगा। वो विरिंची ब्रह्मा दीर्घायु भवतु, कैसे हो गया वो दीर्घायु? ब्रह्मा दीर्घायु कैसे हो गए भाई? बोले शिवा, आपकी व्यवस्था ही ऐसी है, ये आपकी कृपा का ही महिमा है। न जाने किस जन्म में उसने आपके भक्ति की, आपका भजन किया, परिणाम उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। और केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं, ब्रह्मा पद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मलोक का अधिपति, आधिपत्य उसको प्राप्त हुआ, और ये अपने महिमा बना दी थी, महत्व बना दिया था, नियम बना दिया था कि ब्रह्मलोक बहुत लंबे समय तक यथावत रहेगा। अब ऐसा नहीं है, देखो, लोक और लोकपाल, ब्रह्मा तो लोकपाल हैं, ब्रह्म लोक है और ब्रह्मा जी लोकपाल हैं। इसी तरह हमारी ये जो भारत भूमि है, तो इस भारत भूमि का पालक कौन है? कहने के लिए तो कह देते हो राष्ट्रपति है ना? क्या राष्ट्रपति की आयु भारत के आयु के बराबर है? राष्ट्रपति की आयु कब तक है? संविधान ने तो लिख दिया, राष्ट्रपति की आयु संविधान ने लिख दिया कि 5 वर्ष की आयु है। व्यक्ति भले ही रहे लेकिन राष्ट्रपति पद नहीं रहेगा, राष्ट्रपति नहीं रहेगा, व्यक्ति रहेगा, राष्ट्रपति नहीं रहेगा, क्योंकि उतना लिखा है। तो क्या करोगे? वो चाहकर भी दीर्घायु हो पाएगा राष्ट्रपति? नहीं हो पाएगा। कोई कहे कि मैं जब तक जीऊं तब तक राष्ट्रपति बनूं, वो संभव नहीं। कोई कहे कि मैं जब तक जीऊं तो प्रधानमंत्री बनूं, वो संभव नहीं। भारत की संविधान जब तक रहे मैं तब तक जीऊं, वो भी संभव नहीं। भारत भूमि जब तक रहे तब तक रहूं, अरे भारत भूमि तो अनादि अनंत है, तुम्हारे जैसे कितने पति आए और मर गए। शिवपुराण में ऐसी कथा है कि दो राजा आपस में लड़ रहे थे। ये कह रहा था कि इतने मेरी सीमा है, मेरी सीमा यहां तक है, और दूसरे ने कहा कि जाजा मेरी सीमा यहां तक है। तो मेरी सीमा का अतिक्रमण करके बैठा है तू? उसने कहा कि जा तू मेरी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, ये जमीन मेरी है। उसने कहा कि नहीं नहीं ये जमीन मेरी है, मेरी है, मेरी है। कहते कहते दोनों के बीच में तलवार निकल गया, है ना? मैं और मेरा, इसी से तो सारी समस्या है। मैं कौन हूं तो जानता नहीं है, हो गया खत्म, झगड़े का बीज शुरू हो गया। ये मेरी है तुझे पता नहीं, तो हो गया झगड़ा का शुरू। तो कहते दोनों राजा तलवार निकाल लिया, लड़ने शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों राजा लड़ रहे थे आपस में, उसी बीच में कोई और नहीं था, दोनों राजा आपस में लड़ रहे थे। तो कहते हैं दोनों के बीच में एक स्त्री प्रकट हुई, कहीं से आ गई, और दोनों तो मार काट कर रहे थे। वो जोर जोर से देखकर हंस रही थी, बड़े जोर जोर से हंस रही थी। तो लोगों को, दोनों को, राजाओं को आश्चर्य लगा, ये क्या बात है, हम लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए, ये हंस रही है। दोनों ने एक कुछ समय के लिए युद्ध विराम किया और पूछा, तू कौन है? दोनों वीर लड़ते लड़ रहे हैं, उस समय में तू अबला ये कहां से आ गई, और तो क्यों हंस रही है, तू कौन है? कहते उस स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूं। बोले हमारी इसमें क्या मूर्खता है, अपनी जमीन अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, इसमें हमारी क्या मूर्खता है? बोले मैं और कोई नहीं हूं, यही जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वही धरती में हूं, वही भूमि वही धरती में हूं। फिर तू क्यों हंस रही है? तो बोले तुम लोग मूर्ख हो, तुमसे पहले भी इसी तरह ये मेरी है करके लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो समा गए और आज उनका नाम निशाना नहीं है, और उसके भी पहले इसी तरह लड़ते रहे, उससे भी पहले इसी तरह लड़ते रहे, आज सबके सब मुझ में ही समा गए और उनकी सारी हड्डी पसली सब मेरे गर्भ में अस्तित्वहीन होकर रह रही है, और तुम लोग भी आ गए हो कि मेरी है कह रहे हो। अरे मैं किसी की नहीं हुई हूं, मैं किसी की नहीं हुई हूं, मैं सृष्टि से आद तक मैं किसी की नहीं, और सभी लोग मेरी ये कहते और लड़ते 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 मर जाते हैं, लेकिन मैं आज तक किसी की हुई नहीं। ये मूर्खता छोड़ दो, भगवान का भजन करो। मूर्खता छोड़ दो, लड़ना छोड़ दो। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है, तुम्हारी मूर्खता पर मुझे हंसी आ रही है। मैं किसकी हूं ये तो भगवान को पता है कि मैं केवल भगवान की हूं, उसके अलावा मैं और किसी की नहीं। लेकिन लोगों को भ्रांति हो जाती है कि मेरी है, लड़ते हैं मरते हैं सब मुझ में समा जाते हैं, लड़ रहे हैं मर रहे हैं मुझ में समा जाते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। इसी तरह ब्रह्मलोक, बहुत ब्रह्मलोक की आयु बहुत लंबी है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था ये हुई है कि ब्रह्मलोक में लोकपाल जो है वह दीर्घ आयु, उनकी आयु बड़ी दीर्घ है। दीर्घ माने बहुत लंबी आयु है उनकी अपनी आयु के अंतर्गत। ब्रह्मा के एक दिन में, ध्यान देना है गीता में आ चुका है ये बात, ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारा ये सृष्टि प्रलय हो जाता है। हाँ, और ब्रह्मा जी के वो दिन पूरा होकर फिर दूसरा दिन शुरू होगा। रात में प्रलय होता है, उनके रात में हमारा सृष्टि प्रलय होता है, और हमारी आयु की तो कोई गणना ही नहीं है। सृष्टि प्रलय होता है कब? उनके एक रात में। उनको जब रात हुई वो सोने की तैयारी करेंगे तब हमारी ये सृष्टि प्रलय हो जाएगा। और ये सृष्टि की आयु कितनी है उस तक तो हमारा शरीर कितनी बार मरेगा बोलो, कितने बार मरेगा? और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु की कल्पना करो, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष जाएंगे पता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष चले जाएंगे? पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी जब तक दिन है वो तब तक पृथ्वी सृष्टि रहेगी, और ब्रह्मा जी जब सोएंगे तो सृष्टि प्रलय हो जाएगा। फिर दोबारा ब्रह्मा जगेंगे सुबह तो फिर सृष्टि होगी। अब इस तरह ब्रह्मा जी के एक वर्ष में उनके 365 दिन, उनके 365 दिन, इसी तरह उनके 100 वर्ष जब पूरा होगा तब ब्रह्मा जी मरेंगे। कितनी आयु है? हमारे गुरु महाराज जी ने इस पर व्याख्या करते समय संकेत किया, उनको कहीं प्रमाण मिला होगा। ब्रह्मा जी की आयु, पूरी आयु यदि ब्रह्मा जी जिए तो, और जिएंगे भी, उनको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, उनकी परमात्मा ने जितनी आयु निश्चय किया है उतनी आयु जिएंगे, क्योंकि उनको रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रारब्ध नहीं होगा, प्रारब्ध नहीं होगा। और प्रारब्ध न होने के कारण बीच में मरना या न मरने की प्रसंग ही नहीं है, वो तो नियम अनुसार ब्रह्मलोक में प्राप्त करेंगे। और उपनिषद के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा पद की, हिरण्यगर्भ पद की जो प्राप्ति है वह हिरण्यगर्भ उपासना से ही प्राप्त होता है, कर्म से प्राप्त नहीं होता है। किसी भी कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी, हिरण्य गर्भ उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी के अल्पायु होने के कोई प्रश्न ही नहीं है, रोग शोक उनको नहीं है, देवताओं को तो रोग शोक नहीं है, तो ब्रह्मा जी को क्या रोग शोक होगा, इसलिए वो दीर्घायु है। तो कहा 43,20,000, 43,20,000 वर्ष को 10 से गुणा करो तो कितना हुआ है? हाँ, 43,20,000 को 20 से गुणा करो, नहीं एक एक से, 1,000 से गुणा करो, 1,000 से, 43,20,000 को 1,000 से गुणा करने पर ब्रह्मा जी की एक पूर्ण आयु होती है। हमारी 43,20,000 वर्ष को 1,000 से गुणा करने पर हमारे जो वर्ष होगा वह ब्रह्मा जी का एक आयु, पूर्ण आयु माने 100 वर्ष होगा, हमारे जो वर्ष होगा वो ब्रह्मा जी का एक माने 100 वर्ष होगा। अब गुणा करो, तुम लोग हिसाब करने वाले करते जाओ, उसी को लेकर यहां दीर्घायु कहा, अमर नहीं कहा हो, देख लो ख्याल रख लेना क्योंकि अमर किसी भी अन्य साधनों से नहीं हो सकता, अमर तो ज्ञान से होगा। अमर का अर्थ होता है कभी न मरना, कभी न मरना, ये भाव तो ज्ञान से होगा, न कर्म से होगा, न उपासना से होगा, न ध्यान से होगा, वो तो ज्ञान से ही होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी को उपासना से जो प्राप्त हुई है आयु, वो दीर्घ आयु हो गई। हाँ, कभी कभी थोड़ा कहानी भी सुना देना पड़ता है। कहते हैं जटायु थे, रामायण में आता है जटायु का प्रसंग, बड़े ज्ञानी थे, पक्षीराज जटायु बड़े ज्ञानी थे। हाँ, काकभुसुंडी और जटायु का संवाद तो आपने सुना है ना। जटायु बड़े लंबे समय तक ज्ञानी थे तो बहुत दीर्घायु थी उनकी भी, और काग भी, उनके संवाद हो गए। कहते हैं कोई राजा था, उसने कहीं अमृत की बात सुन ली। अमृत आप लोग भी सुने हो ना, बात तो सुने हो, अमृत की बात तो सुन रखे हो ना, अमृत की चर्चा तो बहुत सुन रखे हो। एक अमृत होता है जिसका पान करने के बाद व्यक्ति अमर नहीं होता है, जल्दी नहीं मरता है, इतना ही है। कह तो देते अमर होता है लेकिन अमर नहीं होता है, महाप्रलय पर्यंत जीता है। महाप्रलय में तो कोई भी नहीं, अमृत ही नहीं बचता है तो कहां से अमर होगा, बोलो। महाप्रलय ये अमृत का एक्सपायर डेट है, किसका? अमृत का। महाप्रलय अमृत का एक्सपायर डेट है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट सृष्टि। जब सृष्टि प्रारंभ होगा तब वह मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो ईश्वर के संकल्प से सारे विश्व का जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उत्पादन हो गया, तो सृष्टि संकल्प के साथ साथ 20 का भी उत्पादन करेंगे और अमृत का भी उत्पादन करेंगे, समझे कि नहीं। और ये अमृत का एक्सपायरी डेट कब होगा, तो बोले महाप्रलय में अमृत नहीं रहता है, तो 20 रहेगा कि नहीं, उसका भी एक्सपायरी डेट एक ही दिन। दोनों उत्पन्न हुए हैं पैदाइश से दोनों की, क्योंकि जिस संकल्प से अमृत पैदा हुआ उसी संकल्प से 20 पैदा हुआ, क्योंकि अमृत भी सृष्टि का अंग है, 20 भी सृष्टि का अंग है। रात जिस दिन बना ईश्वर के संकल्प से, दिन भी उसी दिन बना है, ऐसा नहीं कि रात बनने के बाद पहले रात बना फिर। तो आपसे पूछा जाए रात और दिन में कौन बड़ा है, पहले रात होकर दिन हुआ कि दिन होकर रात हुआ? यदि पहले दिन हुआ फिर उसके बाद रात की सृष्टि किया होता तब तो रात्रि से दिन ज्येष्ठ है ये माना जाए। हम किसी किसी के घर जाते हैं तो उनके यहां ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, महाराज ये दोनों एक ही साथ पैदा हुए हैं, फिर भी कहते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े छोटे की परिभाषा कर लेते हैं वहां पर भी, ये बड़ा है ये छोटा है। भाई एक ही मां से एक ही दिन पैदा हुए हैं तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है? बोले पेट से निकालते समय या निकाला गया होगा या निकला होगा उसको आधार मान लेते हैं, तो निकालते समय सीजरिंग किया होगा तो निकालेंगे है ना, और नॉर्मल होगा तो फिर निकलेंगे। निकलते समय में दोनों एक ही साथ तो निकले नहीं, पहले एक निकला फिर दूसरा निकला, इसी तरह निकालते समय दोनों एक ही साथ तो निकालेंगे नहीं, पहले एक को निकालेंगे फिर दूसरे को निकालेंगे। पहले जिसको निकाला वो बड़ा होगा, दूसरे बार जिसको निकाला वो छोटा होगा, हमारी परिभाषा तो यही ना है क्या? इसी तरह पहले दिन बना फिर उसके बाद रात बनी, ऐसा है क्या? या पहले दिन रात फिर उसके बाद दिन, ऐसा नहीं है। एक ही संकल्प से दोनों बने, रात और दिन एक ही संकल्प से बने। एको अहम बहुश्याम प्रजाए, ये संकल्प ही सारे विश्व की उत्पत्ति का कारण बन गया। एक ही संकल्प, एक ही संकल्प अनेक विश्व विभेद युक्त विश्व की उत्पत्ति में कारण बना। किसका? परमात्मा के, यानी माया विशिष्ट ईश्वर के एक ही संकल्प। ये कुहम बहुश्याय बहुश्याम प्रजाए, ये संकल्प जहां किया तो अमृत भी बना जहर भी बना, दिन भी बना रात्रि भी बन गया, जवान भी बन गए बूढ़े भी बन गए। ले जी सृष्टि के आरंभ में बूढ़े और जवान एक ही संकल्प से पैदा हुए हैं। हाँ बोलो, बूढ़ा बड़ा और जवान छोटा ऐसा नहीं समझ लेना, और बच्चे उससे और छोटे ऐसा नहीं समझ लेना हो, ये तो तुम्हारी परिभाषा है। सृष्टि के आरंभ में एको हम बहुश्याम प्रजाय, ये संकल्प एक ही बार उसने किया, एक ही संकल्प किया, उसी एक संकल्प में बूढ़ा भी पैदा हो गया, जवान भी पैदा हुआ, बालक भी पैदा हुआ, युवान भी पैदा हुआ, बच्चे भी पैदा हो गए, सब कुछ एक ही संकल्प से पैदा हुआ। इसलिए वह बड़ा छोटे का कोई बात ही नहीं है। तो मतलब क्या निकला? अमृत के एक्सपायरी डेट कब है तुम लोगों को पता है ना? एक्सपायरी डेट भी ध्यान रख लेना, हो कहीं ऐसा न हो कि एक्सपायरी डेट हो जाए और अमृत काम न करे और तुम पिए जाओ है? और तुम खोजते जाओ। ले जी, अरे भाई तुम पीने वाले तुम भी नहीं रहोगे है? पीने वाले तुम भी नहीं रहोगे, जब अमृत का डेट खत्म होगा तो पीने वाले तुम भी नहीं रहोगे, तो खोजने वाला कोई नहीं रहेगा है? कहते हैं कि अमृत के बारे में जैसे आप लोगों ने सुना वैसे उस राजा ने सुना है?